Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Kathopanishad, presented by Swami Sri Pranavanandaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
Ek bar, do pita putra chori karne ke liye gaye. और जैसे वो चोरी करने लगे, मालिक जग गया और जग गया, मालूम पड़ा अरे जग गए, भागो 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 भागो, भागे दोनों पिता पुत्र, खूब भागे भागे, लोग उनके पीछे पीछे थे। अचानक उनको मालूम पड़ा कि कोई सत्संग हो रहा है, सत्संग में जाके बैठे। वो लोग आए देखे और उनको मालूम नहीं पड़ा और वो लोग वापस चले गए। वहां महात्मा जी कथा में बोल रहे थे, भाई चोरी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो सबको देखता है। भले ही तुमको दुनिया के लोग देख नहीं रहे हैं, लेकिन वो सबको देखता है, उसकी नजर में हम सब हैं, उसको मालूम है आप क्या कर रहे हैं। बस इतना सुना और वो दोनों पिता पुत्र उठ के चले गए। दो चार दस दिन के बाद फिर दोनों चोरी करने के लिए गए। पिता ने कहा कि बेटा तुम बाहर खड़े होकर देखना, और जैसे भी कोई आदमी देखने लगे, कोई नजर आए तो मेरे को सूचना देना, फिर जल्दी से जल्दी हम यहां से भाग जाएं। अंदर वो चोरी करने लगा वो आदमी, बाहर बेटा उसका देख रहा था, कोई आ तो नहीं। अचानक उसको सत्संग की बात याद आ गई और उसने जोर से पिता को पुकारा, पिताजी पिताजी चलो भागो, वो देख रहा है, वो देख रहा है, वो देख। अब वो भागा, दोनों दूर तक भागे। पिताजी ने पूछा कि बेटा कौन देख रहा था, तो बोले ऊपर वाला। अरे बोले हमने सत्संग में सुना नहीं था क्या, आप भी तो थे। वो सबको देखता है, वो सबको देखता है, उसके नजर में हम सब हैं। एक थप्पड़ मारी पिताजी ने। अरे बोले मूर्ख, बोले उसके देखने से क्या होता है, चलो बोले चलो। अरे बहुत सामान था वहां का। बेटे ने कहा कि नहीं नहीं, वो देख रहा है। देखो दोनों ने सुना था, पिता ने भी सुना और बेटे ने भी सुना कि वो देख रहा है, भगवान देख रहा है, और बेटे ने भी सुना, पिता ने भी सुना वो देख रहा है, और पिताजी बोल रहे चलो चोरी करने के लिए, और बेटे ने कहा अब नहीं। बोले अब हम चोरी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमने सुना है, हमने सुना है वो देखता है, सबको देखता है, वो देख रहा है, हम उसके दृष्टि से नहीं बच सकते हैं। उसके बाद पुत्र ने कभी चोरी नहीं की, कभी नहीं की। जैसे भी कुछ गलत काम करने के लिए आगे बढ़ता और उसको याद आती, ओहो वो देख रहा है। और उसका जो पिता था ना, वो कहानी भी सुना देता था। वो बोलता है कि भैया हमने एक सत्संग में सुना है वो सबको देखता है, और उसके बाद भी वो चोरी करता। दोनों को ज्ञान है, पिता को भी ज्ञान है और पुत्र को भी ज्ञान है, तो आपको इन दोनों ज्ञानों में अंतर करना पड़ेगा। वो जो पिता का जो ज्ञान है वो कौन सा ज्ञान है? और जो पुत्र को ज्ञान है वो कौन सा ज्ञान है? देखो अपरोक्ष तो नहीं है वो, क्योंकि उसने तो देखा ही नहीं, देखने वाले को कहां देखा है उसने? देखने वाले को देखा नहीं है, केवल उसने सुना है सत्संग में वो देख रहा है। अरे कौन देख रहा है वो, उसको ये नहीं मालूम, वो तो ईश्वर देख रहा है। वो कौन है, कैसा है, काला गोरा ऊपर नीचे, कपड़े पहना है वो नहीं है, आकार है निराक, कुछ नहीं मालूम, वो देख रहा है केवल। आज वो पिताजी ने भी सुना, उसको भी ज्ञान हुआ, उसका भी ज्ञान है, लेकिन एक को ज्ञान होने के बाद भी वो चोरी गई नहीं, चोरी कर रहा है, और दूसरे को ज्ञान होते ही उसने चोरी छोड़ दी, अब इन दोनों ज्ञानों में आपको अंतर करना पड़ेगा। वो पुत्र का जो ज्ञान है ना, वो सही अर्थों में परोक्ष ज्ञान है, और उसके पिता ने जो सुना वो परोक्ष ज्ञान भी नहीं है, वो आपाततः श्रवण जन्य ज्ञान है। उसके मूल में श्रद्धा नहीं है, पुत्र में श्रद्धा है और पिता में केवल ज्ञान है, श्रद्धा नहीं है। जब यज्ञ कर रहे थे उद्दालक, और उस यज्ञ में बहुत सारी गाय दान कर रहे थे, पीतोदका चग्धत्रणा दुग्ध दोहा निरिंद्रिया आनंदा नामते लोका तांस गच्छति ताददत। गाय दान दे रहे हैं, और कौन सी गाय दान दे रहे, अच्छी अच्छी जो दूध वाली जवान गाय अपने पुत्र के लिए बचा के रखी है, और जो बूढ़ी हैं, जो दूध देने में समर्थ नहीं है, बच्चा देने में समर्थ नहीं, ऐसी लूली लंगड़ी गाय वो दान कर रहे हैं। शास्त्र का ज्ञान तो उद्दालक को भी है, अच्छा दान देना चाहिए, उनको भी मालूम है, और उनके बगल में बैठे हैं पुत्र के रूप में नचिकेता, और वो नचिकेता ने भी सुना था कि दान ऐसा दे जो सामने वाले के काम आए, और मेरे पिताजी कैसा दान दे रहे हैं, पीतो दका, अरे रे रे, बोले अंतिम बार जल पी चुके, अब जल भी पीने की ताकत उसमें नहीं है, जगदत्रणा वो घास खा चुकी, अब आप कितना भी घास उसको खिलाओ वो खाने वाली नहीं, निरिंद्रिया अब उनके अंदर इंद्रियां भी नहीं रही, प्रजनन क्षमता भी नहीं रही, अब ऐसे गायों का दान देंगे मेरे पिताजी तो कहां जाएंगे, दुखपूर्ण लोक में चले जाएंगे। अरे बोले ये दान देना उचित नहीं है, ज्ञान तो दोनों को है, शास्त्र का ज्ञान तो दोनों को भी है, नचिकेता को भी और उनके पिता को भी, लेकिन नचिकेता का ज्ञान परोक्ष ज्ञान है और इनका ज्ञान परोक्ष भी नहीं, परोक्ष से नीचे वाली कोटि का, केवल सुना है, और वो केवल सुना है, इसलिए परोक्ष ज्ञान कोई सामान्य ज्ञान नहीं है। आप जिसको परोक्ष ज्ञान बोलते हैं, परोक्ष ज्ञान, वो परोक्ष ज्ञान बहुत ऊंची चीजें, लाखों लाखों लोगों में एक आधा ऐसा व्यक्ति होता है जिसको परोक्ष ज्ञान, ये सामान्य जो बोध हैं, ये सामान्य बोध, ईश्वर हैं, आत्मा हैं, ये सारा ज्ञान, ये इन्फॉर्मेशन सूचना है, एक मेमोरी है, बहुत सारा कलेक्शन ज्ञान का हमारे दिमाग में, बहुत सारा सत्संग दिमाग में है, जो आप सुन लेते हैं वो भी आपके दिमाग में टेप हो जाता है, जैसे टेप हो गया ईश्वर है ये भी टेप हो गया, और नहीं है ये भी टेप हो गया, और एक को थोड़ा आपने मान लिया, लेकिन वो परोक्ष ज्ञान नहीं है। पंचदशी आप पढ़ते हैं गिरीश भाई स्वाध्याय में, पंचदशी में आया है कि परोक्ष ज्ञान होने के बाद ज्ञान यदि नहीं हुआ साधक को, और ये शरीर छूट गया तो लोक लोकांतर ब्रह्म लोक में चला जाता है, और वापस आने के बाद तुरंत उसको आत्मज्ञान हो जाता है, इतना ऊंचा। ये परोक्ष ज्ञान सामान्य ज्ञान नहीं है, परोक्ष ज्ञान माने वो है, इसका बहुत गहरा जो बोध है वो परोक्ष ज्ञान है। आप जहां बैठे हैं ना, आपको मालूम पड़े वो है, वो है आपका, आगे पीछे ऊपर नीचे एहसास हो रहा है क्या वो है, और यदि एहसास हो रहा है और अपना मन उछल कुदल नहीं कर रहा है तो समझ लीजिए कि आपको परोक्ष ज्ञान है। लोग बोलते थे ना पुराने जमाने में, अरे भैया बेईमानी मत करो क्योंकि वो दिख रहा है भाई। ये परोक्ष ज्ञान बहुत ऊंची चीज है, एक बार परोक्ष ज्ञान हो जाए आपको, एक महात्मा जी वृंदावन में हुए, पहाड़ी बाबा जी, अपने आश्रम के बहुत सारे लोग जाते थे उनके पास, जो राजेंद्र दास जी महाराज जिनका नाम लेते रहते हैं, पहाड़ी बाबा, पहाड़ी बाबा, बहुत सिद्ध पुरुष थे, जब वो साधक थे तो उन्हें एक रामानुज दास नाम के साधु मिले, उनके गुरु मिले, और जब उन्होंने उनको मंत्र दीक्षा योग दीक्षा दे दी और उन्हें कहा कि मेरे ही साथ रहो आप और यहीं बैठ के ध्यान करो, बैठो यहां बैठो साधु बैठो, आप जो बैठ करके जब जप करते ना ध्यान करते साधना, अभी मन है, अभी मन का क्या भरोसा, पता नहीं क्या क्या सोचे हो। अच्छा है कि कहीं खिड़की खुली हुई नहीं है कि आप क्या सोच रहे हैं ये देखने के लिए, और यदि आप क्या सोच रहे हैं ये देखने के लिए कोई खिड़की खुली होती तो क्या पता अंदर हम क्या सोचते, पता नहीं कैसी कैसी बातें, और वो बैठकर सोचते, बहुत छोटी बातें, बहुत निम्न बातें सोचता, मन तो बहुत निम्नतर बातों में जीता है। जैसे ही वो सोचने लगते हैं वो महात्मा डंडा लेके पहुंच जाते, अरे महात्मा ये क्या सोच रहा है, और वो बोल देते थे, अरे लड़की के बारे सोच रहा है, अट बंद बंद कर बंद कर, इनको कैसे मालूम पड़ा, मन है वो चोरी के बारे में सोच रहे, ओ ये चोरी के बारे में सोच रहा है, बंद कर। अब महात्मा इतने घबरा गए, जैसे ही कोई बात मन में आती है तो उनको लगता कि अब ये वो इतने अंदर, ओ चुप, अरे अभी अभी चोरी की बात आ गई, अरे ये बैठे हैं भैया, ये बैठे बैठे, कोई भी बात मन में आए वो देख रहे हैं, प्रत्यक्ष देख रहे हैं वो, और कोई आपको देख रहा होगा तो आप गलत काम कर सकते क्या, नहीं कर सकते, मालिक के सामने चोरी कैसे करोगे आप, वो देख रहा है भैया, वो नजर बचाना पड़ेगा, फिर आप नजर बचा के करोगे, लेकिन मालिक यदि सामने बैठा होगा तो आप कहां से चोरी करोगे आप, उसके बाद तो वो तो समाधि में चले गए, अब वो जो भी कोई सोचने की बात थी ना वो दिमाग से विदा हो गई, क्योंकि वो बैठा हुआ देखने वाला बैठा हुआ है। ऐसे वो देखने वाला ईश्वर आपके सामने है, आपको मालूम हो गया, अब ईमानदारी के बाद आप चोरी करोगे मन से भी, आप मन से भी दुनिया की बातें सोचोगे, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। इसलिए जिसको परोक्ष ज्ञान हो जाता है वो परम धर्म को उपलब्ध हो जाता है व्यक्ति, जिसको बोध हुआ ईश्वर है उसका तो 99% काम हो गया, परोक्ष ज्ञान में 99% काम हो जाता है, अब कुल 1% काम बाकी रह गया, 1% जो है वो मैं हूं। इसलिए यहां पर कहते हैं अस्ति इति उपलब्धस्य तत्वभावः प्रसीदति, परोक्ष बोध होने के बाद अपरोक्ष बोध बोले अपने आप हो जाता है, ऐसा बोला है। यहां तो कहा परोक्ष ज्ञान होने वाले के सामने अपरोक्ष ज्ञान दौड़ करके आ जाता है, यदि परोक्ष ज्ञान हो गया तो अपरोक्ष ज्ञान दौड़कर आएगा और आपका वरण कर लेगा, वो केवल हस्ताक्षर करने जैसा है, फाइल तो पूरी कंप्लीट है और हस्ताक्षर नहीं है, तो भाई 1% तो काम है, वो 1% काम है, कितना का फाइल बनाने में तो वो लंबा समय लगता है, हस्ताक्षर कर इतना ही है, तत्वमसी ये हस्ताक्षर कर दिया गुरु ने, आपको परोक्ष बोध हुआ वो ईश्वर है, एहसास हो रहा है अनुभव अंदर से, ओह है सबको देख रहा है, सबके भीतर है, आप सबके भीतर उस भगवान को देख रहे हैं, आपका व्यवहार बदलेगा, आपको मालूम पड़ रहा है भैया अनुभव उसके तुम्हारे भीतर में, भगवान ने बोला है सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्ट, और आपने पूर्ण विश्वास के साथ उसको मान लिया, परोक्ष ज्ञान हुआ, वो तुम्हारे अंदर भी है मेरे अंदर भी है, वो सबका दृष्टा है, वो सबका करता है, 99% काम आपका पूरा हो गया, अब तो ईश्वर आपके अभिमुख अभिमुख होंगे, अभिमुख होंगे अब, और वो बोलेंगे भैया जो तुम हो वो मैं हूं, अब आपका काम पूरा हो गया, फिर 1% जो काम था ना वो तत्वमस्यादि महावाक्य पूरा कर लेंगे। इसलिए यम ने कहा कि बेटा पहले तुम अस्तित्व की गहरी संवेदना के साथ आध्यात्मिक यात्रा का आरंभ करो। और जब अस्तित्व का बोध तुमको होगा तो फिर अपरोक्ष प्रत्यक्ष बोध होने में तुम्हें विलंब नहीं है, वो बोध तो तुम्हारे सामने आ जाएगा। यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामाये अस्य हृदि स्थिताः अथ मृत्यु अमृतो भवति अत्र ब्रह्म समुष्णुते। बोले उस तत्व को जानने के बाद क्या होता है, आपने परोक्ष जान लिया अपरोक्ष जान लिया, इसकी पहचान क्या है। यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामाये अस्य हृदि स्थिताः। मेरे को किसी ने एक कुछ ऐसी कुछ क्लिप भेजी, बहुत मजेदार, वो लाइव क्लिप थी, वो जो कैमरे से पकड़ी जाती है ना वो क्लिप थी। तो मैंने बहुत हंसा, मैं बैठे बैठे, दो लड़कियां हैं और ऑफिस में झाड़ू लगा रही हैं, मालिक तो है नहीं और उसको ये भी नहीं मालूम कि वहां कैमरा लगा हुआ है, और वो जाती हैं और उसका जो क्या बोलते हैं उसको, जो पैसा रखते ना उसमें, गराज बोलते, क्या बोलते, छोटा सा होता है ना उसमें, ड्रावर, हाँ हाँ हाँ, तो वो जाती और जैसे वो खोलने की कोशिश करती और उसको ऐसा लगता कि कोई आ रहा है, वो भाग के चली जाती हो, फिर आती, फिर चली जाती, फिर आती, और वो इतनी मानसिक रूप से अस्वस्थ थी वो बार बार निकल, फिर उसने धीरे से जाया थोड़ा पैसा निकाला, फिर भागी, फिर देखा उसने, फिर आई, फिर भागी, क्यों, उसको मालूम है कि वो आदमी मालिक आ रहा है, अचानक आ गया तो मैं पकड़ी जाऊंगी, और बहुत अस्त व्यस्त अस्त व्यस्त अस्त व्यस्त। लेकिन उसको जब मालूम हो जाए, उसको नहीं मालूम था मेरा फोटो खींचा जा रहा हो, वो वीडियो बन रहा है, उसको मालूम नहीं था, और जब उसको वो चीज मालूम पड़ जाए और उसके बाद उसको कितना भी बोले इसमें हाथ डालो और ये रुपया ले लो, लेगी, उसके साथी कितने भी बोले करो, अरे मालिक तो बाहर चले गए, निकालो पैसा, निकालेगी। यही तो बात बोल रहे हैं, यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते ये अस्य हृदि स्थिताः। उस ईश्वर का आत्मा का बोध होने के बाद आपके अंदर की जितनी भी कामनाएं वासनाएं जलन घृणा ईर्षा द्वेष सब कुछ समाप्त हो जाती। अब उसके बाद फिर ये बहुत सारी शरारतें हैं ना, ये ईश्वर के बोध के पहले की चीजें हैं, ये बोध होने के बाद हमारा मन अपनी सारी शरारतें उछल कूद छोड़ देता है। कई बार ऐसा होता है कोई सुबुद्ध श्रोता आके बैठे हो तो प्रवचन करने की शैली कुछ अलग हो जाती है, और सुबुद्ध श्रोता यदि सामने ना हो ना गंभीर तो बोलने की शैली कुछ अलग हो जाती है। देखो व्यवहार बदल जाता है, बोध जो है व्यवहार के परिवर्तन के प्रति कारण बन जाता है। जब आपको मालूम पड़ा कि हमारे सामने भगवान है तो आपका अनुशासित व्यवहार होगा, फिर काम क्रोध जलन घृणा ईर्षा ये सारे मन के जो भाव हैं आप श्रमपूर्वक त्याग कर देंगे, श्रमपूर्वक। अभी आप यहां बैठे हैं और आपको ऐसा लगा कि चलो थोड़ा पैर लंबा करके बैठूं, तो आप बैठोगे क्या? आप एक घंटा बैठोगे लेकिन आश्चर्य की बात आपके मन में कभी नहीं आएगा कि ये पैर थोड़ा सा लंबा करूं लेटूं, ऐसा नहीं लगे, क्यों? आपको मालूम है भैया सब लोग देख रहे हैं, और वही आप अपने घर में बैठे रहोगे तो कितने बार अपनी टांग फैलाओगे, अरे वो तो कोई देखने वाला नहीं है, फिर उस समय घुटने में दर्द भी ज्यादा करता है। आप यहां आराम से घंटा भर बैठे रहते हो कोई तकलीफ कमर में पैर में, लेकिन आप जब घर में बैठे रहोगे ना तो फिर सारी शरारतें मन और ये तन करेगा। जब यहां सामान्य लोगों के बीच में हम बैठे हैं तो एक अनुशासन है, और हम ईश्वर की उपस्थिति में जब बैठेंगे उनकी दृष्टि में हम बैठेंगे तो हम कितने अनुशासित होंगे। और इसके बाद फिर आपको अपरोक्ष बोध होगा तो मर्त्यो अमृतो भवति। आचार्य यम कहते हैं कि फिर आप अमृत हो जाओगे, क्योंकि फिर आप धर्म से ऊपर और अधर्म से ऊपर, जन्म और मृत्यु से परे जो सच्चिदानंद परमात्मा है उसका बोध होगा आपको, और आप अनुभव करेंगे मैं शरीर से अलग हूं, मैं आत्मा हूं और आत्मा जन्म और मरण से परे हैं। हाँ, यही है मर्त्यो अमृतो भवति। ये मृत्यु अज्ञान जन्य है और ये मरना शरीर का धर्म है। जिसका पैदा होना धर्म है उसी का मरना धर्म है। जो पैदा होने का आश्रय है ना वही मरने का आश्रय है। ये शरीर की मृत्यु होती है, ये शरीर मरता है और ये शरीर पैदा होता है, और इन दोनों के साक्षी हम हैं, दृष्टा। पैदा होने की भी साक्षी आप हैं और मरने की भी साक्षी आप हैं। अनंत अनंत वृत्तियों के दृष्टा हम हैं। आपके अंदर अनेकों प्रकार की वृत्तियां पैदा हो रही हैं, अनेकों प्रकार के विचार पैदा हो रहे हैं, अनेकों प्रकार की भावनाएं पैदा हो रही हैं, और उन सब के दृष्टा आप हैं। मैं दृष्टा हूं, साक्षी हूं, और साक्षिने का विकार ही ना, जो देखने वाला होता है ना उसमें विकार नहीं होता है। विकार को देखने वाला कभी विकारी नहीं होता है। बुखार को आप देख रहे हैं तो आप बुखार कैसे हो सकते हैं भाई? बुखार बुखार को नहीं देखता है, बुखार बुखार को नहीं देखता है। अच्छा, सिर दर्द को देख सकता है क्या? सिर दर्द को आप देख रहे हैं ना, तो सिर दर्द आप है कि आपसे अलग है? सीधी सीधी बात है, दो दो चार का नियम है। बुखार को बुखार नहीं देख सकता है, सिर दर्द को सिर दर्द नहीं देख सकता है, शरीर भी ये शरीर अपने को नहीं देख सकता है। तो इसको देखने वाला, इस शरीर को देखने वाला, बुखार को देखने वाला, सिर दर्द को देखने वाला कौन है? वो अलग है, आत्मा, मैं अलग हूं। और विकारिना साक्षीना का विकारिता, जो साक्षी होता है ना उसमें विकारिता नहीं होती, विकार से अलग होता है। और जब आप विकार नहीं है तो दवा किसकी होगी फिर भाई? दवा आपकी होती है कि बुखार की होती है? दवा आपकी होती है कि सिरदर्द की होती है? तो मिटता सिरदर्द नहीं कि आप हैं, इसलिए अनंत अनंत मिटने और मरने वाली जो चीजें हैं उसके हम दृष्टा है। हाँ, इसलिए कहते कि मर्त्यो, समझ रहे थे ना, समझ रहे थे। ओहो हो, हाय हाय, मर गया। आदमी बोलता ओहो ओहो, मर गया मर गया मर गया। एक महात्मा जी थे, बहुत मजेदार साधु थे। जैसे कभी उनको बुखार उखार आ जाए, खांसी आ गई, एक बार खांसी आ गई, तो उसने मेरे को बोला कि भाई प्रणवानंद, तुम उनको बोलना महंत को, मैं बीमार हूं, मेरे को दवा दे, खांसी उसी आ रही है। तो नॉर्मल थे, खांसी थोड़ी बहुत थी और सब ठीक ठीक था, थोड़ा सा का भी था। लेकिन जैसे ही स्वामी जी के पास पहुंच गए ना, ओहो, कमर ऐसे पकड़ी, ऐसे करने अरे वो ऐसा कि स्वामी जी घबरा उठ के खड़े, और बोले स्वामी जी क्या हो? और जो खांसना, खांसना शुरू कर, अरे बोले स्वामी जी बहुत बीमार, ओ तुरंत बोले डॉक्टर को बुलाओ, डॉक्टर को बुलाओ। और जो डॉक्टर आए ना तो और ज्यादा हम पकड़ करके ले गए। और स्वामी जी बोले, फिर कमरे में जाने के बाद फिर स्वामी जी ठीक ठाक, तो मैंने स्वामी जी को पूछा, स्वामी जी हुआ क्या? अरे स्वामी जी के पास गए, डॉक्टर के पास गए, तो आप कमर पकड़ के बैठ गए, और जो हमको भी लगा कि यार क्या हुआ, अरे बोले ब्रह्मचारी तुमको मालूम नहीं है, कम से कम उसको मालूम तो हो कि मेरे कमर अरे बोले डॉक्टर को पता तो हो मेरे को खांसी है, और यदि मैं नॉर्मल उसको ऐसा ही बोलूं कि डॉक्टर खांसी है मेरे को, तो अरे बोले दवाई यूं कोई छोटी मोटी दे देगा वो। इसलिए बोले कि मैं खास खास के उसको दिखा रहा था कि मैं कितना बीमार हूं, और मेरे कमर पकड़ के नहीं बैठता तो बोले ये महंत इतना जल्दी डॉक्टर बुलाता क्यों बोले। तो आदमी तो दिन भर सुबह से शाम तक तो यही तो करता है, मर गए मर गए मर गए मर गए, हाँ सुबह से शाम तक हम यही कहते हैं, घर में रहते हैं बाहर रहते हैं, हाँ कितने बार हजारों बार मरते हैं, हजारों बार पैदा होते हैं हम लोग, सुबह से शाम तक सुखी होते हैं दुखी होते हैं, कामी होते हैं क्रोधी होते हैं, हाँ हम तो ये इसी में सुबह से शाम तक बने रहते हैं मर्त्य। और उसके बाद फिर जब बोध हुआ ओहो ये तो शरीर है भैया, और शरीर से हम अलग हैं, अब आप कमर पकड़ के बैठोगे कि नहीं, अरे क्या अब क्या बैठना है, ये तो कमर है भैया हम नहीं है ये। इसलिए मर्त्यो अमृतो भवति, एक बार आपने जान लिया कि तो शरीर है, ये तो शरीर है, हमारे अनिल जी बैठे हैं तो इनको इंजेक्शन से बहुत डर लगता है, बहुत लगता है भाई आप 50 ग्राम दवा खिला दो लेकिन इंजेक्शन नहीं। लेकिन जब इन्होंने सुना सत्संग में कि शरीर नहीं हूं मैं आत्मा हूं अहम ब्रह्मास्मि, तो डॉक्टर आया तो बोले मार दो भैया मार दो। और वो इंजेक्शन वो मार दिया, वो देखते रहे वो मैं शरीर से अलग हूं, आओ लगा दिया इंजेक्शन, वो बड़ा मजा आ गया कि हम उस इंजेक्शन को भी देख रहे हैं और वो लगाने वाले को भी देख रहे हैं और उस दर्द को भी देख रहे हैं। एक बार मेरा हर्निया का ऑपरेशन हुआ, मैंने कई ऑपरेशन बचाए हैं, हिम्मत से काम लेना चाहिए। तो जब राइट हिस्से का था वो ऑपरेशन लीलावती हॉस्पिटल में, तो डॉक्टर ने मेरे को बोला कि स्वामी जी हम आपको एक छोटी सी सुई लगा रहे हैं और दर्द ज्यादा नहीं होगा, आप बेहोश होंगे थोड़ा थोड़ा और आपका ऑपरेशन होगा, कोई चिंता नहीं। बोले सब ठीक ठाक है, तो वो सब अपना मास्क लगा के अपना खड़े थे, हथियार बंद लोग थे वो, हाँ। तो मेरे दिमाग में आया कि डॉक्टर को मैं पूछ लूं, मेरे को एक पुरानी बात याद आ गई, मैंने सुना था कि कोई यहां से कोई सेलिब्रिटी कोई व्यक्ति अमेरिका गए थे आंख का ऑपरेशन के लिए, यहां के डॉक्टरों पर भरोसा नहीं था तो राइट आंख का ऑपरेशन करना था अमेरिका में, और वहां जब ऑपरेशन हुआ तो मालूम पड़ा कि उसने लेफ्ट का कर दिया। और यहां के डॉक्टरों पर भरोसा नहीं था, गड़बड़ न कर दे, और वहां गए वो, तो गड़बड़ियां वहां भी होती है, ऐसा मत सोचे कि गड़बड़ियां केवल हिंदुस्तान में होती है, ये रेखा की मां का है फिल्म रेखा की मां, बहुत हल्ला मचा रही, बोले राइट का करना तो लेफ्ट का ही कर दिया। तो मेरे को उस समय वो बात याद आ गई लेटे लेटे, मैंने सोचा कि मेरा राइट का करना ये कहीं लेफ्ट का न कर दे, तो मैंने डॉक्टर को बोला, और डॉक्टर मैंने कहा रुको 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 अभी इंजेक्शन मत लगाओ। मैंने उनको बोला कि आपको राइट का करना है कि लेफ्ट का करना है ये पहले निश्चित करो, तो उसने कहा डॉक्टर ने कि आपका राइट का करना है। मैंने कहा आपने मेरे को तो पूछा ही नहीं, आपने मेरे को तो पूछा ही नहीं, अरे मेरे को तो आपके नर्स ने पूछा, पता क्या उसका क्या भरोसा इधर का किधर का, आप डॉक्टर है तो आप मेरे को पूछो कि आपका किधर का करना। अरे जैसे ही मैंने ये बोला वो पेट पकड़ पकड़ के हंसने लगे, वो सबने मास्क निकाल उतारा, अरे बोले स्वामी जी आप तो बड़े मजेदार है। फिर डॉक्टर ने फिर मेरे को हाथ पकड़ा और बोले डर नहीं लग रहा आपको, मैंने कहा डर नहीं लग रहा है, बोले क्यों, मैंने कहा कि मैं आत्मा हूं ऐसा मेरे को गुरु ने बताया। मैंने कहा कि आप शरीर का ऑपरेशन करने वाले हो ये मेरे को मालूम है क्योंकि मेरा तो ऑपरेशन होता नहीं है, और प्रसन्न हो गए वो। फिर उन्होंने पूछा किधर का, मैंने कहा इधर का, अब लगाओ इंजेक्शन, और जब वो सुई मारा बाबू, अरे तो मैं ऐसे अनुभव कर रहा था मैं अलग हूं शरीर से, और एक अक्षर मंत्र ओम ओम ओम, और इतना अच्छा लगा कि वो पूरा का पूरा जब होश में आया उस समय भी मेरा जप चल रहा था ओम ओम। आपको मालूम पड़ा कि ये शरीर मैं नहीं हूं आत्मा हूं, तो मर्त्यो अमृतो भवति, फिर आप अमृत हो जाते हैं, आप अभय हो जाते हैं, ब्रह्म समश्नुते, और उस समय आप ब्रह्म हो जाते हैं, ब्रह्म को प्राप्त कर लेते हैं। ओम।